ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पंचमा स्कंद अध्याय 19 जंबुद्वीप का वर्णन और श्लोक संख्या है 26 जो हरि नाम के पर आधारित है। अब मेरे पीछे दोहराइए। न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा न साधव भागवता तदाश्रया न साधव भागवता तदाश्रया न जत्र जज्ञे समखा महत्सवा न जत्र जज्ञे समखा महत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वेश सज्ञताम् सुरेश लोकोऽपि न वेश सज्ञताम् न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा न साधव भागवतास्तदाश्रया न जत्र जज्ञे समखा महत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वेश सज्ञताम्। शब्द न नहीं जत्र जहां वैकुंठ कथा सुधा पदा समस्त चिंताओं को दूर करने वाले श्री वैकुंठ अर्थात श्री भगवान की अमृतमयी धारा के समान कथा न तो साधव भक्तजन भागवता श्री भगवान की सेवा में निरंतर तत्पर वाले तप आश्रया। श्री भगवान की शरण में गए हुए ना नहीं जत्र जहां यज्ञ इस मखा। यज्ञों के स्वामी के प्रति की गई भक्ति महा उत्सव। जो वास्तविक उत्सव है सुरेश लोक स्वर्गवासियों का स्थान, स्वर्गवासियों की स्थान अपि यद्यपि ना नहीं वे निश्चय स उस सभ्यता सेवनीय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होता है और जहां पवित्रता की ऐसे नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते हैं अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहां संकीर्तन यज्ञ की उत्सव नहीं होता है ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भारतवर्ष में विशेष रूप से बंगाल की नदिया जिले में हुआ, जहां नवद्वीप स्थित है। अतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक यह पृथ्वी है और इस पर भारतवर्ष स्थित है। भारतवर्ष में ही बंगाल है जो इससे उत्तम है। बंगाल में नदिया जिला जिससे भी उत्तम है और नदिया में नवद्वीप सर्वोत्तम है, क्योंकि यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन का शुभारंभ करने के लिए हुआ। शास्त्र का मत है कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायैर जजन्ति हि सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सदैव ही उनके पार्षद तथा श्री नित्यानंद श्री गदाधर तथा श्री अद्वैत एवं श्रीवास जैसे अनेक भक्त रहते हैं। वे सदैव भगवान नाम का कीर्तन और श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, इसलिए भारतवर्ष विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में अपना केंद्र स्थापित कर रखा है, जिससे लोग वहां जाएं और सतत चल रहे संकीर्तन यज्ञ का उत्सव में भाग ले सके। जैसा कि महासंस्तुत है यज्ञेसा मखा महत्सवः, जथा उन लाखों भूखे मनुष्य को प्रसाद का वितरण कर सके जो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए लालायित हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। इसकी दृष्टि चैतन्य भागवतम में इस प्रकार की गई है, भले ही स्वर्ग क्यों ना हो, यदि वहां श्री भगवान की जस प्रसार करने का प्रचार नहीं हो पाता है, यदि भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव का वहां चिन्ह नहीं मिलता है और कृष्ण भावनामृत को प्रचारित करने वाला उत्सव नहीं मनाए जाते हैं, तो मनुष्य के ऐसे स्थान की कामना नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो यही है कि सदा सर्वदा माता के गर्भ में वास करें। यहां कम से कम भगवान के चरण कमल का स्मरण तो हो सकता है। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसे अधम स्थान में जन्म न लेना पड़े। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज का कथन है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक है। अतः जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन करता है वो अत्यंत भाग्यशाली है। ऐसा मनुष्य परम बुद्धिमान है, जबकि अन्य लोग भौतिक जीवन की अविद्या से ग्रस्त हैं। वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों का उल्लेख है उनमें संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। 100 अश्वमेध यज्ञों की भी तुलना संकीर्तन यज्ञ से नहीं की जा सकती है। चैतन्य चरितामृत के लेखक के अनुसार यदि कोई संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से करता है तो वो पाखंडी है और जमराज द्वारा दंडित होगा। अनेक मायावादी संकीर्तन यज्ञों को अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य शुभ आयोजन के समान पवित्र कार्य मानते हैं, किंतु ऐसा मानना नाम अपराध है। मायावादी भले ही ऐसे सोचे किंतु नारायण के पवित्र नाम का संकीर्तन तथा अन्य नाम का संकीर्तन कभी भी एक समान नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन सलक्वया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सापदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानितं सं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर महद्भी यमा परविभु निर्माय सेते जदमो सपुरुष भुंते गुणान षोडश षोडशात्मकं षोलं कृष्णं भगवान् कथंसि। जब कीर्तनं जत स्मरणं जदीक्षणं जत वंदनं जत श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मस तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय श्री श्री राधा राधिका रमण जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री कौमिकान की जय। तो संकीर्तन यज्ञ के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस भारतवर्ष में नवद्वीप जिला में और जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर जिसको हम क्या कहते हैं मायापुर, स्थान सबसे पवित्र माना गया है। तो ये पांचवा स्कंध में हम भारतवर्ष जैसे अनेक लोगों की वर्णन हुआ है और इस सृष्टि में सात दीप हैं और इस सात दीप के अंदर अनेक वर्ष हैं और उनमें से एक दीप है जम्बूद्वीप। इस जम्बूद्वीप में नौ दीप हैं, उसमें एक दीप है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वालों की जो भाग्य है उसकी संस्तुति करते हैं देवता लोग। तो कहते हैं कितनी बड़ी भाग्यवान है क्योंकि यहां भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में स्थित रह करके समस्त मनुष्य के कल्याण के लिए तप में रत हैं। और जो तपस्या हर एक मनुष्यों के लिए अनिवार्य है अपने को पवित्र करने के लिए, तप दिव्यं पुत्र का जेन शुद्धेत सत्यम जेन ब्रह्म सुखम तो अनंतम, अर्थात तपस्या के द्वारा ही वास्तविक आत्मा को प्रसन्नता व आनंद प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वयं भगवान इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले वासियों के लिए व जन्म लेने वाले लोगों के लिए तपस्या करके लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। दस नंबर श्लोक में नारद जी भगवान नर नारायण की आराधना करते हुए कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, इस दृश्य जगत की सृष्टिकर्ता पालन और संहारक तो भी मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त है। भगवान ये सृष्टि के नियामक है, अर्थात ये सृष्टि को सर्जन करना, पालन करना और इसको विनाश करना एकमात्र भगवान के हाथ में है। परंतु कभी भगवान ये अभिमान नहीं रखते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं, आई एम द ओनली कंट्रोलर। तो भगवान होने पर भी स्वयं अपने को तपस्या में लगा रहे हैं क्योंकि भगवान जो कुछ आचरण करते हैं तो सहजया लोग उनको नकल करते हैं। तो कुछ चीज को हम अनुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि भगवान के आदर्श को अनुसरण करना चाहिए। इसलिए भगवान सोचे कि जो कम बुद्धिमान है, अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं, तो वो सोचता है कि जो कार्य मेरे इंद्रियों को तृप्त करे तो वो कार्य में नकल करूं। तो भगवान इसलिए कहा कि यदि आप मेरे रासलीला को नकल करना चाहते तो फिर इसी प्रकार बद्रिका आश्रम में कठोर तप करो। जिस तपस्या के द्वारा फिर मनुष्य के अंदर ये अभिमान नहीं रहेगा कि मैं भोग करूं। क्योंकि ये शरीर जो भोग करना चाहता है तो पहला उसके अंदर क्या है, भूख प्यास थकान और शारीरिक कष्ट है। इस कष्टों को तो दूर नहीं कर पा रहा है तो फिर भोग क्या करेगा। मान लीजिए आपको बुखार हो गया है तो भोजन करने की इच्छा नहीं होता, जो इंद्रिय चाहते हैं अच्छा अच्छा गुलाब जामुन मीठी चीज खाने के लिए। इसलिए दूषित इंद्रिय वाला व्यक्ति ये भगवान की प्राकट्य का प्रयोजन को नहीं समझ पाते हैं और स्वयं भगवान जितने अवतार लिए हैं इस भारत भूखंड में और स्वयं भगवान ये कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, मैं जब जब ये संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो संबोधन करते हैं अर्जुन भारतवंशी, क्योंकि इस भारत वर्ष की महानता को बढ़ाने वाले कौन है? पांडव है। इस वर्ष का नाम पहले था अजनाब वर्ष, अर्थात भरत महाराज की पिताजी है ऋषभदेव, उनकी पिताजी का नाम था अज, और उनकी पिताजी का नाम था नाभि, सॉरी नाभि, नाभि के पिताजी है अज। तो आज इतने महान प्रसिद्ध राजा थे जिनके नाम पर इस भूखंड का नाम हो गया अज, फिर बाद में इसका नाम पड़ा नाभा, और उनके जो पुत्र हुए भरत महाराज, जिनकी प्रसिद्धि इस सारी ब्रह्मांड में फैल गया, जिन्होंने कम अल्प आयु में ये भोग ऐश्वर्य को त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जो नेपाल में जो गंडकी नदी है सालग्राम शिला की जहां पर बहुलता है, तो उस स्थान पर उन्होंने तपस्या की, और उसी दिन से इस भूखंड का नाम भारतवर्ष के नाम में वैदिक शास्त्र में प्रसिद्ध है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान इस भारतवासियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ही अनाउंस्ड एंड रिनाउंस्ड, भारत भूमिते हैल जन्म जहार, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार। और इस भारतवर्ष में क्या क्या उपलब्धियां हैं जिस कारण से भारतवर्ष प्रसिद्ध है? सब लोग कहते हैं ना मेरी भारत महान है, परंतु ये महानता क्या है किसी को पता नहीं, केवल नारा देते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में इसकी ग्लोरी वा इसकी जो गुणवत्ता है वर्णन की गई है। भारत अपि वर्ष भगवान नर नारायण क्षम आकल्पयंतम उपचितम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपसम उपरमात्मा उपलंधनम अनुग्रहाय आत्मा बताम अनुकंपया तप व्यक्तम गतिम सरति। तो इस भारत भूखंड में विशेष करके क्या है? धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, और सब प्रकार की सुख समृद्धि है। लेकिन आज भारत के लोग इस ग्लोरी को न जानने के कारण तो अमेरिका आदि देश में पाश्चात्य देश को जाते हैं डॉलर कमाने के लिए। और कहीं कहीं हमारी भक्त लोग भी वो जाते हैं कि हम अमेरिका में प्रचार करने के लिए जाएंगे और फिर वहां जाकर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते हैं डॉलर प्राप्त करने के लिए। परंतु हम समझना चाहिए, जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति बहुत दुखी था, वो भी सोच रहा था मैं अमेरिका जाकर डॉलर कमा क्योंकि अमेरिका में बहुत धन है पाश्चात्य देश से। तो इसे घर में बैठ करके ऐसे सोच रहा था, तो एक दिन एक ज्योतिष ने आया उनके घर में और कहा कि तुम क्यों दुखी है? तो उन्होंने अपने दुख की बात बताई कि पिताजी मरने के बाद हमारे घर में कुछ धन संपत्ति नहीं है। तो उस पंडित ने कहा तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं थोड़ा देख लेता हूं तुम्हारा हाथ, तुम्हारे भाग्य में धन है कि नहीं। तो उनके हाथ देख करके कहा कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़ा धनी थे और उनके पास बहुत धन गुप्त रूप में रखा गया है, तुम क्यों विदेश जाने के लिए सोच रहे हो? तुम्हारे पिताजी की बहुत संपत्ति है और इसको किसी एक स्थान में गुप्त रूप में रखे हैं, और ध्यान रखो इस धन को निकालते समय सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो हाथ धन अपने हाथ से निकल जाएगा। तो बेचारा ने ढूंढा परंतु धन नहीं मिला, तो फिर दूसरी बार उस पंडित जी के पास गए और ये पंडित जी कहा कि तुम यदि दक्षिण दिशा में खुदाई करोगी तो क्या मिलेगा? क्या एक बल्लूरी, जानते हैं ना पीला पीला कीड़ा होता है, काट देता है, क्या उसको बोलते हैं? ततैया, वो काटता है बरुड़, बरुड़ बिरड़, ओके, तो वो आपको काटेगा। और यदि आप उत्तर दिशा में खुदाई करोगे तो क्या मिलेगा? काला सांप, वो आपको दंस लेगा, काट लेगा। और आप यदि पश्चिम दिशा में जाकर खुदाई करोगी, वहां क्या है? जख्य है, जो आप पर आक्रमण करके धन छीन लेंगे और प्राण भी ले लेंगे। तो फिर बेचारा कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और यदि पूर्व दिशा में आप थोड़ा से खुदाई करोगी तो आपको क्या मिलेगा? अमा धन, जो आपका पिताजी उस ट्रेजर हाउस में रखे। तो बेचारा वहां जाकर के खुदाई शुरू कर दिया और उसको धन कर दिया, परंतु विचार किया, अरे पंडित जी तो मुझे सीधा सीधा बोल देते भाई आप पूर्व दिशा में जाओ और खुदाई करो, तो ये क्यों यही बात बताए कि दक्षिण दिशा में खुदाई करोगे, उत्तर दिशा में खुदाई करोगे, पश्चिम दिशा में खुदाई करोगे, ये मिलेगी, इसका आशय क्या है? कभी कभी हमारे मन बहुत मतवाला होता है, सरल सहज विधि को त्याग करके हम सोचते हैं अरे इससे हरे कृष्ण जप करने से क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, जो करोड़ों जन्म से तप करके यज्ञ अनुष्ठान दान व्रत वेद अध्ययन करके प्राप्त नहीं होता है, क्या हरे कृष्ण जप करने से हो जाएगा? बड़े बड़े पंडित भी उनकी बुद्धि चकरा जाता है, जैसे गोपाल चक्रवर्ती, हरिदास ठाकुर ने जो व्याख्या किए, अरे ये नाम भास में मुक्ति प्राप्त हो जाता है, नाम की प्रभाव पाप से मुक्त नहीं होना है, वह मुक्ति प्राप्त नहीं करना, तो नाम भास पा शुद्ध नाम उच्चारण के पहले ही स्थिति को प्राप्त हो जाती है। तो गोपाल चक्रवर्ती ने प्रतिवाद की, बड़े विद्वान थे, और वो उनके घर में जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी हैं गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, उनकी घर में वो सेवक थे, सेवक मतलब कुछ ऐसे सरकारी कार्य करते थे, और हरिदास ठाकुर के साथ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के साथ उन्होंने चैलेंज किया, अगर यदि ये बात वास्तविक प्रामाणिक ना हो तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। और हरिदास ठाकुर बहुत समझाने के प्रयत्न किए, एवं व्रतम सो प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागम द्रुत चित्त उच्चै हसति गायति रोदति रोति उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्य। वो कह रहे कि जो केवल नाम जप करने के व्रत ले लिया है उनकी क्या स्थिति उत्पन्न होती है ना, कभी कभी इतनी प्रेम में आवेश पे आ जाता है तो जोर जोर से चिल्लाता है और कभी कभी रोता है और बाह्य लोगों का उपेक्षा करके वो नृत्य भी करता है। अर्थात नाम जप का वास्तविक फल है भगवत प्रेम प्राप्त, परंतु ये पंडित जी नहीं समझ पाए वेदांत के अध्ययन करते हुए। तो उसी प्रकार भारतवर्ष में हम देखते हैं कि अनेक ऐसे विद्वान हैं जहां पर यहां संस्तुति की जाती है कि भारतवर्ष में ऐसे पवित्र नदियां हैं, ऐसे पवित्र क्षेत्र हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र हैं, भगवान नर नारायण, भगवान वराहदेव, वामन देव जो भृगु कच्छ है, तो यही स्थान पर है, परंतु इस प्रकार अज्ञान व्यक्ति की जैसे वो दशा थी तो अपने पिताजी को धन को नहीं जानता था, तो भारत की ही दशा है कि लोग नहीं जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कौन सी धन है। सदैव प्रभुपाद जब आप पाश्चात्य जगत गए तो जब इंग्लैंड में उन्होंने प्रवचन किए हाँ, कौन सा जगह है जो अभी हमारा मैनर है, हरे कृष्ण मैनर, भक्ति वेदांत मैनर। तो श्रील प्रभुपाद कहें कि आप लोग भारतवर्ष में 100 साल तक राज की और भारत की जो धन था आप लूट लाए, परंतु असली धन नहीं लाए थे, इसलिए मैं आपको इस धन को देने के लिए आया हूं। और ये कौन सी धन है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भारतवर्ष की कौन सा धन है आप देख लीजिए, सुन लीजिए। इस भारतवर्ष में अनेक पर्वत हैं जहां पर सब ये धन मौजूद है। कहां से निकलता है सोना? पर्वत से ना, एक मैनाक पर्वत है। और ये सोना ऐसे नहीं है जो 22 कैरेट व 24 कैरेट, तो ओरिजिनल सोना है जिसको पहनने पर कितने किलोमीटर तक वो शाइनिंग होता है, और वो देवता लोग इसको नेकलेस बनाकर पहनते हैं। और ये सोना की नदियां हैं जो जामुन की फल से बनता है, उस रस सूखने के बाद वो इतनी बड़े जामुन है उसके फल गिरते ही नदी बह जाता है, और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो सोना में बदल जाता है। जो हम जो श्रीलंका कहते हैं, हाँ जानते हैं कि वहां पर वास्तविक सो सोना था माइंस, जो रावण ने इसको खुदाई करके अपने महल बनाया था, परंतु वो उनको और सोर्स मालूम नहीं था, क्योंकि सोना के अधिकारी कौन है? लक्ष्मी है। परंतु वो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में न लगा करके स्वयं भोगतना चाहे, इसलिए उनकी सोना की लंका जल करके राख हो गई। तो उसी प्रकार भारत के लोग इस धन को अपने इंद्रिय भोग में लगाना चाहते हैं, इसलिए इस धन का उनको तलाश नहीं मिलता, जो भी धन है वो भी जलकर राख हो जाता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आज सोना के इतने अभाव हो गया है, लोग इसको बैंक में रख करके कागज के नोट छपाते हैं। तो पहले था स्वर्ण मुद्रा, और वो लोग इसे सोना के ऊपर सोते थे, और वो गौओं की खुर में और सींग में ये सोना की क्या होता था, सजावट होता था। और आज माताओं को स्त्रियों को सोना चेन पहनने के लिए नहीं मिलता है नेकलेस, सब इमिटेशन पहन रहे हैं, ये बड़े दुख की बात। और फेंक भी देते थे, बर्तन को फेंक भी देते थे, और ब्राह्मण को सोना दान करने पर भी उन्होंने पहाड़ के पास जाकर सब फेंक दिया। फिर यज्ञ करने के लिए आवश्यक हुआ तो धनंजय गए, उस धन को संग्रह करके लाए। और प्रभुपाद कहते हैं कि लोग उस समय क्या कहते थे, ये येलो स्टूल है, सोना को क्या मानते थे, येलो स्टूल। तो आज तो गोल्ड की जमाना चल गया, जिसको स्टूल मानते थे वो भी आज उपलब्ध नहीं है, आज कागज के नोट के पीछे सब पड़े हैं। परंतु इस भारतवर्ष में भारत अपि अस्मिन वर्षे शैर शैरम संति बहबं मलय मंगल प्रस्थ मेनाक त्रिकुट ऋषभं कुटकम कोल्लक सह्य देवगिरी ऋष्य मुख श्री शैल वेंकट महेन्द्र पारिधार विंध्य सुक्तिमान रुक्षगिरी पारिजात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन, ये गोवर्धन पर्वत धनी रैवतक कुकुभंग नीलम गोकामुखा इंद्रकील कामदगिरी इति चान्ये च शत सहस्र शैलम तेषां नितंब प्रभवा नदा नद्यस्य संति संख्यातः। और इतने नहीं, ये पर्वत से निकलने वाला अनेक नदियां हैं जिन नदियों की नाम को स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, कितने बड़े सौभाग्य है। इसलिए हम लोग जो बाथरूम में स्नान करते हैं, हालांकि कभी कभी बोरवेल लगाते हैं, लेकिन बहुत जगह है पंचशील में तो हरिद्वार की पानी आता है, भगवान इतनी सुविधा कर दिए हैं, तो जल भी हम बाथरूम में नहाते नहाते नदियों को स्मरण कर सकते हैं, गंगेश्च जमुनाश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, उसके साथ साथ अनेक नदियां हैं భీమరతి గోదావరి నిర్విఘ్న పరయస్ని తాపి రేబా సురస నర్మదా చర్మవతి సింధురంధ సుణ మహానది కౌశికి మందాకిని జమున సరస్వతి వేసద్వతి గోమతి సరయు కితనే నదియా జోకి పాశ్చాత్య దేశ మే నదియా ఉపలబ్ధ నహీ హై. లోక్ తో నది మే నహీ జాతే హై స్నాన్ కర్నే కే లియే. యహాన్ పర్ వృందావన్ కితనే దూర్ హై, జమునా నది బహ రహీ హై, లోగో కో పతా నహీ హై, సునే హోంగే హాన్, లేకిన్ గయే నహీ కభీ. కోయి ఏక భక్త తా ఫరీదాబాద్ మే, ఉన్హోనే కహా కి ప్రభు జీ హాన్ మేరే 47 సాల్ హో గయా, మే మథురా జాన్తా థా కి భగవాన్ కా జన్మ భూమి హై, లేకిన్ మే కభీ నహీ గయా థా, లేకిన్ ఇస్ కన్ మే జోడ్నే కి బాద్ మే ట్రిప్ బనాయా ఔర్ భక్తోన్ కే సాథ్ గయా, ముజే బహుత్ అచ్చా లగా. మే దేఖో హాన్ భారత్ మే జన్మ లేనే వాళ్ళకి కితనా బడా భాగ్య హై, పాస్ మే పవిత్ర నదీ హై ఔర్ భగవాన్ కే జన్మ స్థాన్ హై, లోగ్ నహీ గయే. ఔర్ కహతే కి యహాన్ పర్ అప్నే ఆప్ హాన్ జో వైదిక ప్రథా హై, వర్ణాశ్రమ ప్రథా చల్తా హై, యహాన్ పర్ లోగ్ టోక్తే హై. జైసే విదేశ్ మే ఆప్ కితనే భీ కుచ్ భీ కరో, డ్రగ్స్ కరో, ఆప్ వ్యభిచార్ కరో, కుచ్ భీ నియమ్ నహీ హై, లేకిన్ యహాన్ పర్ థోడా ఛిడ్కన్ హై. అభీ భీ భారత్ మే నియమ్ హై, కిస్ లడ్కి కే సాథ్ ఛిడ్కన్ కరో తురంత్ ఆ జాతే హై, ఔర్ తో స్ట్రిక్ట్ హోగా. తో శిక్షా సంస్కృతి ఔర్ సభ్యతా కా ఉద్గమ స్థాన హై ఆర్యావర్త్ వా భారతవర్ష హై. और मनुष्य को इस भारत वर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए, जिसे मैं कहता ना हमारी भारत महान. और एक पद क्या कहते हैं, कितने भी हो बेईमान परंतु हमारी भारत महान. यहां पर बहुत लोग बेईमान हैं परंतु फिर भी मेरे भारत महान. परंतु इसकी असली अर्थ को समझना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए कि भारत का भूमि बा यहां जो मिट्टी है वो बदलता नहीं है. और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि लोगों को ब्रह्मलोक तक कल्पा युसम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणा युसम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतं मनसिनः सन्न्यस्त संजातम अभयम पदम हरे. ब्रह्मलोक में 100 अरब वर्ष की आयु प्राप्त करने की उपेक्षा भारत वर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेयस्कर है, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है. यद्यपि मरते लोग के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है और भगवान के चरण कमल में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है. इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होते हैं, जहां न तो चिंता है न भौतिक शरीर, युक्त पुनर्जन्म. इसलिए देवता लोग तरस करके स्तुति कर रहे हैं, देवता लोग गा रहे हैं कि हमको भी ये सौभाग्य मिले भारतवर्ष में जन्म लेने के. और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अमेरिका जाकर के डॉलर कमाएं. और कोई कोई भाग्यवान होता है बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक जाना चाहता है, परंतु स्वर्गलोक की निवासी यहां आना चाहता है. हम कितने बड़े बेवकूफ है हा? तो इसलिए कह रहे हैं कि वो स्थान में कभी नहीं रहना चाहिए. सुरेश लोकोपि नवे सद्यताम. तो सुरेश लोक का अर्थ है जहां पर सुर रहते हैं, देवता लोग रहते हैं. और खास करके आचार्य लोग कहते हैं ब्रह्मा लोक, क्योंकि पूर्व श्लोक में बने थे ब्रह्मा लोक, जिसमें लंबा आयु होता है. तो ब्रह्मा जी की एक दिन कितना 1000 चतुर्युग बीत जाता है, और एक मोमेंट ब्रह्मा जी की कितना ऐसे युग बीत जाता है, कितना 1000 चतुर्युग है एक मोमेंट. तो इसलिए ब्रह्मा लोक को प्राप्त करके जो लंबा आयु सुख सुविधा उनको प्राप्त होता है, इससे यह आत्मा की कुछ कल्याण नहीं होती है. वास्तविक आत्मा को जो लोग चाहते हैं सुखी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उसको क्या करना चाहिए, ना विवेकी होना चाहिए. तस्माद विवेकिनाम अयम विवेकम इत्याहु. जो लोग विवेकी हैं, अर्थात जिनकी विचार प्रमुख हैं, जो अच्छे बुरे की ज्ञान है, सही गलती का निर्णय कर सकते हैं, ऐसे विवेकी वैकुंठ कथा सुधाम एवं सर्वत्र आधिक्येन स्वादि तदा उपगेय भूयसि. एक सुंदर व्याख्या कर रहे हैं आचार्य पुरुषोत्तम दास. उन्होंने कह रहे हैं कि जो विवेकी है तो कहां पर अपना रेसिडेंस बनाता है, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा अपदा। अपदा का मतलब है नदी व सरिता, कि जहां वैकुंठ की कथा, जहां पर कोई कुंठा नहीं है। प्रभुपाद शब्दार्थ में लिखते हैं वैकुंठ कथा सुधा आपदा, अपदा भी है और आपदा भी है, अर्थात जहां पर चिंताओं रूपी पहाड़ नष्ट हो जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं। जैसे इंद्र ने जब वज्र की प्रहार करता है तो क्या होता है, पहाड़ टूट जाता है, उनका पंख कट गया। तो जहां ये सुंदर सरिता प्रभावित होती है कथा रूपी सरिता, तो वहां चिंता रूपी ये पर्वत जो है ध्वस्त हो जाते हैं। कथा सुधा पदा, और दूसरे अर्थ है आपगा, अपगा का मतलब है जो नीचे की ओर बहती है, ये कौन है, सरिता। और ये सरिता जब बहती है तो क्या होता है, सबकी मल को कड़मस को धो देता है। इसलिए हम लोग जाते हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। लेकिन ये नदियां बाजू सरिता है, ये शरीर को मल को धो लेता है, मन की मल व आत्मा की मल को नहीं धो पाता है। परंतु वैकुंठ की कथा रूपी जो सुधा व अमृतमयी नदियां हैं, सरिता है, और इस सरिता को आश्रय करने वाला कौन है, भागवत तदा आश्रया, जो इस कथा को गान करता है, ये कथा को नित्य निरंतर श्रवण करता है, और ये कौन है, साधव, वो साधु लोग हैं। और ये साधु का लक्षण क्या है आप जानते हैं, साधु का क्या लक्षण है, भगवद्गीता में क्या बताया गया है साधु का लक्षण, अपिचेत सुदुराचार भजते मां अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य, साधु मंतव्य, ये मेरी मत है। और किस लिए वो साधु है, कि वो भजन करता है, किस प्रकार भजन करता है, अनन्य भाव अर्थात न अन्य, उनके और कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई उनकी दृष्टि नहीं है, सिर्फ मुझे ही प्राप्त करने का इच्छा रखना, इसलिए वो साधु है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ऐसे साधु के पास जाकर के कथा श्रवण करना चाहिए। कौन से साधु हैं, सतन प्रसंगा मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तदजोषणं आसु अपवर्ग बत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि उन साधुओं की संकर, जैसे हरिदास ठाकुर वैश्य से कहे मैं आपकी काल आपके साथ में संग करूंगा, सब लोग आश्चर्य, साधु एक वैश्य के साथ संग करे, एक कैसा है। परंतु हरिदास ठाकुर कहे कि संग का मतलब है सम्यक ग, सम ग और ग मिलकर के होता है संग। तो यात्रा, ये आत्मा ये शरीर को लेकर भी यात्रा करता है और बार बार इसको परिवर्तन करता है ना, कर्म के अनुसार। परंतु हरिदास ठाकुर कहे कि मैं इसी प्रकार आपको संग प्रदान करूंगा, जिससे कि आपका इस प्रकार शरीर नहीं रहेगा, बार बार यात्रा करना नहीं पड़ेगा, और ना ही फ्लाइट का टिकट ना ट्रेन का टिकट काटना पड़ेगा शरीर को यात्रा करना। मैं आपको ऐसे ही संग प्रदान करूंगा जिससे कि तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, इस स्थान में पहुंचा दूंगा सम्यक, जिस स्थान में जाकर के फिर आपको लौटना नहीं पड़ेगा। संगम यदि स्यात् भगवत संगिन मागार दारात्मा वित्तेषु, एक श्लोक है ना प्रह्लाद जी गा रहे हैं पंचम स्कंद में। वास्तविक इसी प्रकार संग करना चाहिए, किसकी, कपिल देव कहते सतम प्रसंगा मम बीज संविद, ना जिनकी संग करके मेरी पराक्रम मेरी गुणगान व जस को आप सुन सकते हैं, इन साधुओं की संग करना चाहिए। जिससे क्या होता है ना आपकी अंदर में अंतकरण में जो आनंद प्राप्त करने के लिए चाह है वही पूर्ति हो सकता है मेरी कथा की सेवन करने से। भवंती हृत करना रसायना कथा, क्योंकि हृदय में आनंद प्राप्त करने की इच्छा है परंतु इस आनंद की सूत्र किसी को पता नहीं है और इसलिए उन्होंने क्या करते हैं जो दुख देने वाले हैं उसको सुख समझ करके उनकी संग करते हैं, ये शरीर की संग करते हैं। परंतु मेरी जो कथा है यह आत्मा अनुभूति प्रदान करने वाला है, आत्मा को संतुष्ट करने वाला है, आत्मा के स्वरूप में आनंद में है। परंतु इसके संग क्या हुआ है तंग विद्या दुख संजोगम वियोगम जोग संगीतम, इन्होंने दुख के साथ संग कर लिया है। जो शरीर दुख देने वाला है मल मूत्र से भरा हुआ एक गड्ढा है तो उसके संग कर रहा है और कई जन्मों से। परंतु मेरी कथा रूपी जो आत्मा ज्ञान को प्रवृद्ध करने वाला है, आपके अंदर अविद्या को नष्ट करने वाला है, वो कथा को सुनने मात्र से ही मुझे प्राप्त करने के लिए डिजायर चाह उत्पन्न होगा। इसलिए हृदय अपने आप ही सैटिस्फाइड हो जाता है। इंद्रियों को संतुष्ट करने से, मन को संतुष्ट करने से आत्मा संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए जो भागवत तदाश्रया ऐसे कथा को लेकर वो जीता है, क्या है सुनंती गायंती घृणंती साधक, उनकी जीवन है ये कथा ही जिनकी जीवन है। हम अपने जीवन किस पर आधारित किए हैं, कभी हमको पोस्ट मिल जाए, कभी हमको अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, तो कितनी चाह को लेकर के हम सुखी होना चाहते हैं। परंतु इन सारी अविद्या का जड़ को काटने वाले होते हैं साधु, उन्होंने इस अविद्या को जड़ को ज्ञान रूपी तलवार से काट देते हैं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस कथा को नित्य निरंतर सेवन करते रहोगी तो धीरे 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 इस पेड़ का जड़ कट जाता है। अभी हम पुणे के पास एक गांव गए थे सर्वसंग्रह का घर, तो वहां का झरना बह रहे हैं बहुत सुंदर झरना, तो हम स्नान किए और बहुत ऊंचा पहाड़ी है वहां से गाय भैंस है, तो मैं एकांत में जोर जोर से कीर्तन किया तो वहां जो भैंस है तो सोचे कि जंगल में कहां से आवाज आ रहे, सब ऐसे कान उठा कर देख रहे हैं और इकट्ठा हो गया। और जो ग्वाला था वो सोचा कि कोई एक भूत इधर आ गए, वो एकांत जंगल है तो वो पुकारने लगा कि कोई इधर गिर गया है, मैं पानी में हूं तो वो सोचा कि पानी में गिर गया है कोई। तो वहां देखा एक फेड वो झरना की मतलब पहाड़ के ऊपर है और बहुत उसका जड़ पकड़ा हुआ है, परंतु पानी बहते बहते क्या हुआ इस जड़ को उखाड़ दिया है। फिर अगले दिन जब मैं देखा वो पेड़ गिर गया है। तो मैं इस प्रकार सोचा जो इसी प्रकार नित्य भगवान की कथा को सेवन करता है तो धीरे धीरे उसके अविद्या की जड़ इस प्रकार क्या होता है नष्ट हो जाता है और गिर जाए ना पुनर्जन्म। और स्वयं परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि देखिए कि आपका कथा सुनते सुनते मेरा कैसे जो प्यास लग रहा था, भूख लग रहा था, ये शारीरिक जो उर्मिया था ये सब बंद हो गया है। और इसलिए मैं समझ गया हूं कि जो व्यक्ति इसी प्रकार कथा को गान करता है निवृत्त तरसई रूपगीय मानात भव सदी श्रुत्वा मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरच्यते बिना पशुका। ऐसे कौन है पशुओं को मार करके यज्ञ में आहुति देख करके स्वर्ग लोग जाना चाहेगा, कहते सुरेश लोकोपी, यहां पर सुरेश देवता जहां पर रहते हैं, जहां पर सुख सुविधा है, नंदन कानन है, स्वच्छ जल है, वहां पर कोई ड्रेन नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, वो गंदगी पानी नहीं है वहां, और लोग सोमरस पान करते हैं। परंतु वहां के लोग बहुत चिंता और उद्विग्न में त्रस्त हैं और ये लोग की सुख सुविधा भी काल के द्वारा नष्ट हो जाता है, परंतु जो वैकुंठ के जो सुख है वो सुधा है, वो अमृतमय है, वहां लोग मरते नहीं है। ये वर्णन हम सुनते नहीं और इस वर्णन को हम समझ भी नहीं पाते हैं कि सचमुच ऐसा है क्या, क्योंकि हम लोग इसके आश्रय नहीं लिए हैं। कौन से आश्रय? न साधवं भागवता तदाश्रया, जिन्होंने ये कथा को ही जीवन बनाया है उनकी आश्रय नहीं लिए, उनसे हम अपने जीवन की दुख बखान नहीं किए। और यहां हम बहुत प्रकार के कर्मकांड में लगे रहते हैं, परंतु ये दान पुण्य आत्मा को सुख प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए वहां पर कौन सी यज्ञ करना चाहिए? न जत्र यज्ञ समखा महत्सवा। तो यहां तो हम यज्ञ आदि करते हैं, परंतु विशेष करके यज्ञ यज्ञेश अर्थात यज्ञ की इस भगवान जिसमें संतुष्ट होते हैं। अब ये कौन सी यज्ञ है? यज्ञानं जप यज्ञस्मिन्। भगवान कहते हैं वास्तविक यज्ञ कौन है? जप यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन। भगवान जब कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च, तो लोग सोचेंगे बहुत प्रकार यज्ञ है, जैसे बृहस्पति सब, जैसे पंचाग्नि यज्ञ, तो बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, परंतु इस यज्ञों से भगवान को संतुष्टि नहीं मिलता है। इसलिए कलयुग में विशेष करके इस यज्ञ का बैन किया गया है। कौन से यज्ञ हैं? अश्वमेधम गवालंभ्यम संन्यास पलपौत्रिकम देवरण सततपति कलो पंच विवर्चित। तो खास करके जो अश्वमेध और गोपालंभ्या जो गाय को हत्या करना यज्ञ में, तो ये कलयुग में बंद है, मना किया गया। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं कौन सी यज्ञ संपन्न करते हैं? सुमेधसा, जो उनकी बुद्धि अच्छी है वो क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तना प्राय जजंती ही सुमेधसा, इस यज्ञ को संपन्न करते हैं जहां पर कीर्तन भगवान की कीर्ति की गान किया जाता है। और यह समझ लेना चाहिए कि हमारे शास्त्र में इतने इस यज्ञ की संस्तुति की गई है कलयुग में, परंतु हम लोग रुचि नहीं दिखाते हैं, ना जप में रुचि है ना यज्ञ में रुचि है। इसके कारण क्या है? सचमुच देखा जाए कि हम अनेक दिन से यह अभ्यास कर रहे हैं जप आदि करना, कीर्तन करना, परंतु भगवान के प्रति रति नहीं बैठता है। रति ना जन्मिला के न ताल, बोलो केरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, परंतु हमारी रति उत्पन्न नहीं होता है। इसके कारण क्या है? भक्ति बिना ठाकुर कहते हैं नामा बिना किछु नहीं तो आर 14 ब्रह्मांड माच है। इस 14 लोक में इस नाम की सिवा और कुछ है नहीं, और हम लोग जो अनर्थ है आजकल, लोकनाथ महाराज कह रहे थे क्या, सेल फोन में भी हम जप करते हैं, मोबाइल चलता है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, मैकेनिकल चलते। ये अनर्थ वास्तविक क्या है जो नाम के प्रति रति उत्पन्न नहीं करता है? वो क्या है? अविद्या तिमिरा गगन रुत्र। और चैतन्य महाप्रभु इस नाम को जप करने की जो विधि सिखाए, थोड़ा आगे सुनी चैना तररोपी सही सुना अमानीना मानदेन कीर्तनिया सदा। तो ये जो अमानी मान देना, ये गुण को डेवलप करने के लिए उसका और नेक्स्ट श्लोक पर जाना पड़ेगा। क्या है? अपने स्थिति को पहले समझे, अय नंद तनुज किंकर पतिताम माम विषमय भपांच। क्या ये हमको रियलाइज हुआ है? बीस का मतलब क्या है? जहर। हम जो भी सेवन कर रहे हैं क्या हम समझ रहे हैं कि विष है, जहर है? और विष का भी मतलब है, विषम का मतलब है समान नहीं है। हमारी मान सबके प्रति समान नहीं है। हम देखते हैं कि ये मेरी शत्रु है, ये मेरी मित्र है। तो इसलिए जिनकी मान इस विषमता से भरे हुए हैं, राग द्वेष से भरे हुए हैं, तो वो कभी अपने इस अमृत का आस्वादन नहीं कर सकता है। हालांकि हम सब भगवान के किंकर हैं, दास है। अइ नंद तनुज किंकर, हम नंद तनुज के किंकर है सेवक। परंतु हम इस सागर में क्यों गिर गए हैं? क्यों हमारे अंदर विषमता है। इसलिए इस विषमता को, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महत सेवां द्वारम आहुर विमुक्ता, इससे मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? महत सेवा। और यहां पर क्या कहा गया है? महोत्सव। ये साधु लोग उत्सव मनाते हैं। कौन से उत्सव मनाते हैं? हम जगेश मखा महोत्सव, इस प्रकार हरिनाम के उत्सव, वर्ल्ड हरिनाम उत्सव फेस्टिवल, श्रवण उत्सव, कीर्तन उत्सव। तो इसको हम पर सेवन कीजिए उत्साह के साथ, और देखिए कि इस स्थान में वास्तविक मन लगता है रहने के लिए। अनेक लोग के पास आपका पंजाबी वर्ग में अनेक धनी व्यक्ति हैं, मैं सुना हूं, तो वो रोज आते हैं मंदिर में और अधिकांश समय यहां बिताते हैं। कि वास्तविक धन पावन की टीवी जितना सारी सुख सुविधा है वो उनको सेटिस्फाई नहीं करता। और सत्य यही है, मछली को आप कितने कंफर्टेबल प्लेस दे दीजिए, अगर उनके पास पानी नहीं है तो कभी मछली सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य तभी ही उस स्थान में सुखी हो सकता है जहां पर ये चलता है। वैकुंठ सुधा कथा रूपी सरिता बहती है, और जहां बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा भगवान की क्या किया जाता है? आराधना किया जाता है, इसको कहते हैं व्रत। और यदि उस यज्ञ के द्वारा, इस उत्सव के द्वारा भगवान की आराधना नहीं होता है, वो अपने पुण्य बढ़ाने के लिए कि हमारे घर में सुख सुविधा आ जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, लोगों का बहुत सारी इच्छा है, तृष्णा है, और इसको सार्थक करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं? इस प्रकार पुण्य कर्म का आश्रय लेते हैं। परंतु इस प्रकार यज्ञ से लोगों को सुख नहीं मिल सकता है, और यहां पर रहना भी नहीं चाहिए, और उस यज्ञ को सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवत आलम बिना तदाश्रय नाम एव आश्रयंतु हो परमालक्ष्यामिति ज्ञान सिद्धि अर्थ। और ये यज्ञों को जो संपन्न करता है तो अपने आप वो ज्ञानी बन जाता है, सुमेधसा। अर्थात आप यज्ञ करो बा इस नाम संकीर्तन करो, अपने आप बुद्धिमान बन जाओ। मेधा न होने पर भी अपने आप बुद्धि आ जाओ। इसलिए कृष्ण भक्ति ही चतुरता प्रदान करता है। कृष्ण जे भजे सेवण चतुर, तो ये शास्त्र के सिद्धांत है, आचार्य की कथन है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा इति प्रमाण लक्षणम संकीर्तन बहुला परिचरण आदि रूप महंता उत्सव गीत नृत्य वाद्य भक्ति आराधना आदि जेसु ते जत्र न संति स सुरेशस्य ब्रह्मण अपि लोकम न सभ्यताम न आश्रिता। वहां पर लोगों को आश्रय नहीं लेना चाहिए जहां पर इस प्रकार बड़े बड़े यज्ञ संकीर्तन नहीं होता है, भगवान की श्री विग्रह की आराधना नहीं होता है। इसलिए कलिजुग के यही प्रमाण है कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जो संदेश था कि सभी लोग सुखी हो सकते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने इसको सार्थक किया। हैप्पियों को हैप्पी बनाया। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न है? हाँ, मनुष्य को जब हायर टेस्ट मिलता है परम दृष्टा निवर्तते, हाँ जब हायर कॉन्शियसनेस आता है तब फिर इसी प्रकार डिस्टिंक्शन जो मेंटलिटी है दूर होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत व्यक्ति हैं जो पहले उनका बुरा आदत था, शराब पीते थे, हाँ, परंतु उनको जब टेस्ट मिला वास्तविक प्रसाद का तो उन्होंने शराब छोड़ दी। हाँ, तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो डिस्टिंक्शन मेंटालिटी है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावना तभी जाएगा हम जब देखेंगे कि सारी जगत वसुदेव कुटुंबकम, ये कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट के अनुसार होता है। लेकिन अभी हम अभ्यास करें, भगवान भगवद गीता में कहते हैं समम सर्वेशु भूतेशु मद्भक्ति लभते परम, तो मेरी पराभक्ति लाभ होता है समम सर्वेशु भूतेशु, और किस प्रकार होता है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, तो इस स्टेज को प्राप्त करना पड़ेगा मदभक्ति लभते परम। और फिर भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या मां अभिजानाति जापं जच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते, तो भक्ति के द्वारा इसको समझा जा सकता है। और ये भक्ति का क्या लक्षण होता है फिर आगे भगवान कहते पंचमा अध्याय में क्या है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गतिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। हाँ, सबकी प्रति अंदर से, क्योंकि जो जलन है ना ये प्रकृति के गुण है, रजगुण है, जिसको हाँ नहीं हम लोग फैसला नहीं करना चाहिए, पर नहीं हम लोग अधिकार भी देखना चाहिए किस परिस्थिति में हम सहन करना चाहिए किस परिस्थिति में असहन होना चाहिए। जहां पर हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु आपके ऊपर जब आक्रमण किए तो चैतन्य महाप्रभु सहन नहीं किए, परंतु आप देखिए हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई किया जा रहा था, परंतु वहां भक्तों को चाहने पर भी क्या कर सकते हैं आप बताओ, सब तो चाहते हैं कि हरिदास ठाकुर बच जाए, इस प्रकार अपराध कर रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, लाठी लेकर के हम पिटना चाहिए? तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, किस एक परिस्थिति होता है, और भगवान भी चाहते थे चैतन्य महाप्रभु है ना हरिदास को जो पीट रहे थे उनको मारने के लिए। तो यही है कि अनेक भक्तों को जेल में डाल दिया गया, हाँ कहां पर, रशिया में, तो क्या वो जेल जला दिए, हाँ लेकिन उससे ही आप देखिए हाँ जहां पर भक्तों को इस प्रकार ये होता निराधार, इससे भगवान की ग्लोरी और फैल गया। हाँ, सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है अभी रशिया में, लेकिन आप तो आप देखिए ना, तो उस परिस्थिति को देखना चाहिए, तो आप नहीं ऐसे नहीं कि जेल में जाकर के आग लगा दो है ना ये लोग कर रहे हैं, तो हम परिस्थिति को देख करके उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। नहीं आपको भी समझना चाहिए ना कि भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्या उस समय रशिया में भक्त नहीं थे, हाँ वो चाहते उन्होंने बहुत स्ट्राइक भी की, तो जितना संभव है हमारे मन तो उद्विग्न होना चाहिए, पर ऐसा नहीं भाव बहुत अच्छा हुआ वो मार खाया ठीक हुआ ऐसे ही किया, ऐसे भावना नहीं रखना चाहिए, परंतु ये भी बेवकूफपन नहीं करना चाहिए, जाओ तुरंत एक्शन लो उस पर। नहीं तो देखिए रिजल्ट देने वाले भगवान है, जैसे हरिदास ठाकुर के प्रति वो गोपाल चक्रवर्ती अपराध की है ना, उन्होंने कहा कि आपका नाक काट दूंगा है ना, लेकिन वहां हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार और वहां उनकी जो पुरोहित थे उनको गाली दी, अरे तुम दो पैसा के ज्ञान रखते हो, तुम हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवतों की निंदा की, तुम्हारा बुरा हालत होना वाला है, इतना ही शब्द से कहा हाँ, और वैसे भी बोल। हालांकि हरिदास ठाकुर इसका अपराध तो नहीं है, परंतु जो भक्तों का शुद्ध भक्त का जो चरण राज्य है वो अपराध को स्वीकार करता है उसके प्रति, तो अल्टीमेटली उसकी कर्म की फल देने वाले भगवान ही होते हैं। तो भक्तों को इतना कह सकते, तुम जो बुरा काम किया है ना तुम्हारा मिलेगा। अगर आपके पास ऐसे शक्ति है तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उपदेशामृत में इसका जीवा भी काट लेना चाहिए, नहीं सॉरी श्रीमद् भागवतम में है जो दक्ष यज्ञ के विषय है उसको उपदेशामृत में कोट करते हैं रूप गोस्वामी। यदि वास्तविक वो बलवान है क्षत्रिय है तो अपने बल दिखा करके अपराधी का जीवा काट लेना चाहिए, अगर यदि ब्राह्मण है तो उनकी तर्कों को परास्त करना चाहिए, और यदि वो शूद्र है तो स्थान छोड़कर भी चल जाना चाहिए। तो आप अपने गुण को परीक्षा कीजिए, नहीं उनके बारे में आपको सोचना नहीं है, आप सोचना चाहिए कि आप पॉजिटिवली कीजिए ना, जहां संकीर्तन आंदोलन होता है तो आप लोगों को जुटाइए, उनको कुछ दान दीजिए, भोजन के प्रबंध कीजिए, पॉजिटिवली कीजिए कुछ है ना, तो नेगेटिव हमेशा ही रहेगा, सृष्टि को प्रारंभ से नेगेटिव थे, लेकिन आप अपने को सोचिए कि मैं कितने योग्य हूं कि इस कार्य को विरोध करने में मेरे पास कितने समर्थता है, ऐसे भूमिस्थली नहीं होना चाहिए, अपना अधिकार को लेकर के कार्य करना चाहिए। तो पर्सनली पूछ सकते हैं क्योंकि समय हो गया है। धन्यवाद। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन महाजज्ञ की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा राधिका रमण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर